दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में त्योहारों का मौसम चल रहा है और हम सब जानते हैं कि हर एक त्योहार के पीछे कुछ न कुछ धार्मिक, कुछ सामाजिक और कुछ वैज्ञानिक पहलू जुड़े होते हैं। तो आज गुजरात यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट श्री गौरांग जानी हमें त्योहारों के समाजशास्त्र के बारे में बताने जा रहे हैं। गौरांग जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
नमस्कार, थैंक यू।
गौरांग जी, ये त्योहारों का समाजशास्त्र क्या होता है?
सबसे पहले तो यह है कि त्योहार तो हम मनाते हैं, लोग मनाते हैं, तो और त्योहार की शुरुआत भी लोगों ने ही की। हम ऐसा मानते हैं कि कई त्योहार वो गॉड के साथ, ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो त्योहार की शुरुआत तो हमारे फोर फादर्स ने और कई जनरेशन से हमारे यहाँ शुरू हुई है। पहला एक समाजशास्त्रीय उसका एक आस्पेक्ट ये है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये जो त्योहार है वो हस्तांतरित होते हैं, और जो हस्तांतरित होते हैं उसके साथ वो जो परंपराएं हैं वो भी उसके साथ हस्तांतरित होती है। लेकिन सवाल ये है कि जैसी जैसी पीढ़ियां बदलती हैं वैसे हमारे त्योहार भी बदलते हैं, और त्योहार का जो उसका जो व्याप है वो भी बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, आज देख लीजिए कि आप ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में ये बातचीत हो रही है। किसी को पता नहीं था आज से 100 ईयर्स पहले कि इतने सारे भारतीय लोग या दुनिया के दूसरे देशों के लोग ऑस्ट्रेलिया में आएंगे और अपना खुद का जो अपना देश का जो त्योहार है वो वहां पर मनाएंगे। तो त्योहार है वो उसकी कोई ज्योग्राफिकल वो सीमाएं नहीं रही है। एक बहुत बड़ा जो आधुनिक युग में जो त्योहार है उसका बहुत विशिष्ट उसका उदाहरण है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक दूसरा देख लीजिए कि जो त्योहार है वो ओरिजिनल जो धर्म के हैं उस धर्म को छोड़ के अभी दूसरे धर्म के लोग भी वही त्योहार को मनाते हैं। ये भी एक आधुनिक उसका फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे नाताल है तो नाताल का जो त्योहार है या 31 दिसंबर है भूत रूप से क्रिश्चियों का त्योहार है। लेकिन आज आप दुनिया भर में देखिए कि वो त्योहार जब हम मनाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि क्रिश्चियों का त्योहार, जैसे खुद का त्योहार है इस रूप से हम उसको मनाते हैं। तो एक बहुत बड़ा सोशियोलॉजिकल आस्पेक्ट ये है कि धर्म जो त्योहार धर्म के साथ जुड़ा हुआ था वो धीरे धीरे कल्चर के रूप में बदलता जा रहा है। तो त्योहार एक रूप से धर्म को एक सीमित दायरे से बाहर निकाल के विश्व भर में भी वो उसके जो लक्षण है, उसके जो आस्पेक्ट है, वो दूसरे धर्म के लोगों को भी हस्तांतरित करता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार का योगदान है। लेकिन दूसरी एक बात यह है कि त्योहार है वो हर जनरेशन में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परंपराओं को जीवित रखता है। आज की जो नई पीढ़ी है, जो 15-20 साल और 25 साल की जो पीढ़ी है, वो त्योहार को जिस तरह से देखती है उस तरह से उनके फोर फादर्स नहीं देखते थे। एक जो समाजशास्त्र पहलू ये है वो जेंडर का भी है, और जेंडर का इसलिए है कि जितने भी त्योहार आप देख लीजिए और खास तौर पर से भारत के जो त्योहार है इसके बारे में हम बात करें तो सभी त्योहार को आगे ले जाने में वो त्योहार को ज्यादा से ज्यादा उसका जो आनंद जो हमको मिलता है, हमारे परिवार को मिलता है, समाज को मिलता है, वो घर की महिलाओं से मिलता है, क्योंकि महिलाओं का योगदान पूरे त्योहार में इतना है। लेकिन हमने कभी उस तरह से देखा नहीं कि त्योहार जो हम उसका जो आनंद ले रहे हैं उसके पीछे अपने घर की माँ या बहन या भाभी और पत्नी उनका कितना सारा योगदान है, लेकिन कभी हम उस रूप से देखते नहीं है। इसीलिए नहीं देखते हैं कि जो पूरी एक पुरुष प्रधान मानसिकता है वो भी त्योहारों को अपने रूप से देखती। इसलिए अब दिवाली का त्योहार अब देख लीजिए या नवरात्रि का त्योहार आप देख लीजिए, किसी भी त्योहार को देख लीजिए, उसमें खाना बनाने से लेके घर को सजाने से लेके चाहे वो धार्मिक रूप से मंदिर में जाना है या पूजा करना है, ये सारी चीजें में महिला अग्रसर होती है। लेकिन ये जो योगदान है, जो सांस्कृतिक योगदान है, ये योगदान को हम कभी भी लिखते भी नहीं उसके बारे में, इसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक सोशियोलॉजिकल आस्पेक्ट हमको उसमें देखना पड़ेगा। दूसरी एक बात त्योहार की मेरे रूप से ये भी है, त्योहार आप देख लीजिए कि इंटरवल के बाद आता है। एक इंटरवल के बाद इसलिए, और आधुनिक जो जमाना है हमारा वो इतना स्ट्रेसफुल है, हर अपने काम में बिजी है, हर लोग मेहनत करते हैं अपनी कारकिर्दगी के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल से जब ये त्योहार आते हैं तो मुझे लगता है कि वो त्योहार के आसपास के जो एक दो दिन होते हैं इसमें जिस किस्म का एक स्वाभाविक और नेचुरल जो आनंद लोगों को मिलता है, आधुनिक जमाने में जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस को भी वो कम करता है, और जब स्ट्रेस को आप जब कम करते हैं तो उसकी असर आपकी खुद पर और अपने परिवार पर होती है, और परिवार के सभी लोग उसके साथ जुड़े हुए होते हैं त्योहारों के साथ। तो ये भी एक त्योहार का मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत की बात करें और दुनिया के दूसरे देशों से भी बात करें तो त्योहारों को हम रूरल और अर्बन रूप से भी हमको देखना चाहिए कि ग्रामीण जो इलाके हैं, ग्रामीण जो हमारा विस्तार है, उसमें किस तरह से आज भी परंपरागत रूप से लोग त्योहार मनाते हैं। क्योंकि वहां पर ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक गांव है, एक गांव में जितने भी परिवार रहते हैं वो परिवार वही सदियों से वहीं पर इसी गांव में रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। तो उनका जो त्योहार का देखना और मनाने का जो तरीका है, मुझे लगता है कि वो तरीके भी उनको जानने पड़ेंगे। क्योंकि त्योहार के बारे में जब कोई लिखता है चाहे बोलता है तो कौन बोलते हैं, जो शहरी लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो त्योहार का, जैसे मेरे जैसे लोग जो त्योहार की बात करते हैं। लेकिन जब तक हम गाँव में अलग अलग ज्ञाति के अलग अलग संप्रदाय के लोग त्योहार को किस तरह से देखते हैं वो हम नहीं सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि हम त्योहारों का एक ही पास हम देख पाए। इसलिए ये मॉडर्न जमाने में जब इतनी सारी मीडिया और सोशल मीडिया और माध्यमों का इतना दबदबा है, इतना उसका प्रभुत्व है, तो मुझे लगता है कि जहां जहां भी त्योहार जैसे मनाए जाते हैं उसको हम जितना भी माध्यम के तौर से लाएंगे, ऐसा त्योहारों का इम्पोर्टेंस नई जनरेशन में भी बढ़ेगा। और इस रूप से मुझे लगता है कि हमको त्योहारों को देखना चाहिए।
गौरांग जी, आपने बड़ी ही सहजता के साथ त्योहारों के साथ क्षमा शास्त्र को जोड़कर हमें बेहतरीन जानकारी दी। SBS हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।